कल आपने सुना इंद्र वज्रा चंद्र के माध्यम से कि भगवान का जन्म, चंदा प्रभु भगवान का जन्म पौष कृष्णा एकादशी को माता लक्ष्मणा के गर्भ से चंद्रपुरी नगरी में हुआ। अब अगले श्लोक में चलते हैं। 4 नंबर के श्लोक में उपेन्द्र वज्रा छंद, ये भी 11 अक्षरी छंद है। नीचे इसका लक्षण लिखा हुआ है। आपको कुछ भी ना समझ में आए तो भी तीर्थंकर भगवान हमारे कहाँ जन्मे हैं, उनके माता पिता के क्या नाम थे और उनके पंच कल्याण किन तिथियों में हुए, इन सब चीजों का पूरा पूरा ज्ञान कराने वाला ये कल्याण कल्पतरु स्तोत्र है। इसी पर कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली भी चलती है जो डिस्प्ले की गई है परसों से, और उसको आपको 15 अगस्त तक सायंकाल 6 बजे तक ज्ञानांजलि ऐप के माध्यम से ज्वाइन करना है और उसको भर करके भेजना है। पुनः 16 अगस्त को उसके लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। उपेंद्र वज्रा छंद में भगवान चंदा प्रभु का परिचय। शशांक कांतो जल देह धारी तथाप्य देहा शिव धाम यतिष्ठत विराग मोहोपि निजात रक्तः प्रभु समी मोह तमो हरः स्यात्। शशांक कांतो भगवान चंदा प्रभु श्वेत वर्णी थी, चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल शरीर के भी धारी थे और तथापि देहा शिव धाम में अतिष्ठत फिर भी देह रहित होकर के वे मोक्ष धाम में स्थित हो गए। विराग मोहापि निजात्म रसाहा, राग और मोह से रहित होकर भी अपनी आत्मा में वे अनुरक्त है, सिद्ध शिला पर भी अपने शुद्धात्म तत्व में अनुरक्त है। सा प्रभु में मोह तमो रहस्यात्। हे चंदा प्रभु भगवान, ऐसे गुणों से समन्वित होकर आप जो विराज रहे हैं सिद्ध शिला पर, ऐसे भगवान चंदा प्रभु मेरे मोह अंधकार को दूर करने वाले होवे, अर्थात उनकी भक्ति से मेरा मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। सारे कर्मों का राजा तो मोह ही है। इस मोह को मदिरा की उपमा दी गई। इस मोह के कारण लोग एकदम पागल हो जाते हैं और मिथ्या दृष्टि तक बन जाते हैं। ऐसे मोह को तिलांजलि देने के लिए भगवान चंदा प्रभु के चरणों में ज्ञानमती माता जी ने प्रार्थना किया है। आगे पुनः उपजाति छंद के माध्यम से ज्ञानमती माता जी कहती हैं, जन्म प्रसिद्धे दिवसे जिनेशा दिगंबरो भूत परिरक्त ग्रंथिम कैवल्य लाभेन हि सप्तमी स्यात् पूता प्रसिद्धा सित फाल्गुनीया तन्मासि शुक्ला किल सप्तमीया तस्यां विमुक्तो किल कर्म दूरा तस्यां ज्ञानैक सिन्धुर भुवनैक बन्धु जिनः समीन्ता सततम् निशीद। इन दोनों श्लोकों के माध्यम से ज्ञानमती माता इन चमत्कारिक छंदों के द्वारा जब भगवान की स्तुति में अपने शब्दों को अनुबद्ध कर देती हैं तो समझो शब्दों की माला बन जाती है, और यही शब्द यही स्तुतियां इनके जीवन को दिव्य शक्ति प्रदान करने में सक्षम हुई हैं। वरना आप जानते हैं ज्ञानमती माता कितना सूक्ष्म सा आहार लेती हैं, कोई आहार की शक्ति से ये नहीं बैठी हैं। इनकी दिव्य शक्ति जब भी कोई प्रश्न करता है तो ये यही कहती हैं, भगवान की भक्ति के अंदर अनंत शक्ति है और उस अनंत शक्ति को ये अपने शरीर के माध्यम से, अपने कमजोर शरीर के माध्यम से भी जब प्रदर्शित करते हैं तो लगता है कि वास्तव में इन 50 50 सालों के अंदर 50 साल पूर्व इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की रचना की आज जब हम इसको पढ़ते हैं तो पूरी अपडेट लगती है। अर्थात इन भगवंतों के चरित्र आज भी हम सबके लिए जानने की अत्यंत आवश्यकता है। वरना पूजन करते करते, स्वाध्याय करते करते शास्त्रों के पन्ने फट जाते हैं, लेकिन याद नहीं हो पाता कि भगवान कहाँ जन्मे, क्या उनका चिन्ह है, उनके माता पिता के क्या नाम है। जब हम जन्मभूमियों के नाम पूछते हैं तो लोग बगले झांकने लगते हैं। यह आपका पुण्य है कि उन भूली बिसरी जन्मभूमियों को प्रकाश में लाने का कार्य किया है तो ज्ञानवती माता जी ने। किन जन्मभूमि तीर्थों के दर्शन करके हम अपने जन्म को सार्थक करें। तो जन्म प्रसिद्धि दिवसे जिनेशा, जन्म से प्रसिद्ध जो दिवस हुआ आपका, यानी कि पौष कृष्णा एकादशी जो तिथि है आपके जन्म की, उसी दिन ग्रंथि परिहृत्य दिगंबरा अभूत। ग्रंथि मानी परिग्रह को, परिग्रह रूप ग्रंथि को छोड़ करके आपने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, यानी कि भगवान की जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक की तिथि दोनों पौष कृष्णा एकादशी है। अधिकतर आप लोग देखते होंगे ना कि जिस तिथि में भगवान भगवंतों के जन्म हुए उसी तिथि में उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। तो ऐसी तिथि को नमन किया और फिर कहा, कैवल्य लाभे नहीं प्रसिद्धा असित फाल्गुनी सप्तमी पूता साध, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति फाल्गुन वदी सप्तमी, फाल्गुन वदी सप्तमी तिथि आपके केवल ज्ञान से पवित्र हो गई। अर्थात फाल्गुन वदी सप्तमी को आपने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। कहा कि उसी चंद्रपुरी नगरी में जो बनारस के निकट है, आज जिसे कोई चंद्रावती भी कहते हैं, बिल्कुल नदी के किनारे छोटा सा मंदिर बना हुआ है। कभी ना कभी कोई ना कोई महापुरुष आएगा और इस जन्मभूमि का अच्छे रूप में जीर्णोद्धार और विकास करेगा, जैसी प्रेरणा पूज्य ज्ञानवती माता जी की चल रही है। तो उन भगवान चंदा प्रभु को केवल ज्ञान हुआ फाल्गुन वदी सप्तमी के दिन। और फिर तस्याम अखिल कर्म दू तस्याम तन्मास शुक्ला या सप्तमी, उसी माह में जो शुक्ला सप्तमी आई, यानी फाल्गुन मास में ही शुक्ल पक्ष की सप्तमी आई, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को केवल ज्ञान हुआ और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ही आप अखिल कर्म दुरा विमुक्ता, संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके आपने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। चंदा प्रभु के टोक पे गए ना, समय शिखर पर एक ऊंची टोक है जहां पर पहले दौड़ दौड़ करके नीचे जाते हैं और फिर ऊंचाई पर चढ़ते हैं और भगवान चंदा प्रभु से कहते हैं, हे भगवान बड़े ऊंचे पे आके विराजमान हो गए, बहुत कष्ट हुआ है आने में, क्योंकि चलने की जब आज शक्ति नहीं रहती उसमें भी जा करके 36 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ते हैं। सोचो उस पहाड़ की महिमा, अतिशय चमत्कार कि आपके सबके पैरों में शक्ति आ जाती है समय शिखर के पहाड़ पर चढ़ करके। तो भगवान ने मोक्ष पद को प्राप्त किया फाल्गुन शुक्ला सप्तमी के दिन समय शिखर से। फिर क्या हुआ, ज्ञानैक सिंधु भुवनैक बंधु, हे भगवान 5 कल्याण को तो आपने प्राप्त कर लिया और आप ज्ञान के एक सागर बन गए। केवल ज्ञान कि उपमा सागर से दी वह भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान में तो तीनों लोकों की चराचर वस्तुएं सब दिखने लग जाती हैं। तो ज्ञान के समुद्र हैं आप भुवनैक बंधु, और तीनों लोकों के बंधु हैं, बांधव हैं, क्योंकि आप ही सबको मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले अकारण बंधु हैं। सजिना संततम मे अंतः निषेध, ऐसे भी चंदा प्रभु भगवान मेरे मन के अंदर सदा ही विराजमान रहे, मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में, मेरी मानस में हमेशा विराजमान रहे, क्योंकि उनके शरीर का वर्ण धवल है, मेरी आत्मा भी धवल हो जाए, सारे कर्म कलंक नष्ट हो जाए, सारा मिथ्यात्व का अंधकार नष्ट हो जाए और मेरी आत्मा एकदम धवल शुद्ध शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना निरंतर भाते भाते एक दिन भावना भवनाशिनी होती है। तो आत्माओं, आप ज्ञानमती माता जी की इस कृति से लाभ उठाएं, व्याकरण का ज्ञान भी प्राप्त करें, संस्कृत के छंद का ज्ञान भी प्राप्त करें, अलंकार ग्रंथ का भी इसी के अंदर समावेश है। और कोश तो अंदर आ ही जाता है, एक शब्द कहीं दो बार नहीं आता है। ये सब क्या है? कोश की महिमा है, एकाक्षरी कोश की भी महिमा है, और अनेकार्थ नाम माला भी है जो एक शब्द के अनेक अर्थ बताती है, और अनेक शब्दों को एक में पिरो करके और शब्दों को की माला बना देती है। ऐसे छंद, व्याकरण, अलंकार और कोश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये कल्याणकर्तरु स्तोत्र हम सबके लिए महान साधन है। इस साधन का उपयोग करके ज्ञान की प्राप्ति करें, यही मंगल, प्रेरणा और आशीर्वाद है। अब हम